स्मार्ट कास्ट
आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
आज की तारीख में जब करियर ऑप्शंस की बात आती है तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को इन्फ्लुएंसर तो किसी को फूड ब्लॉगर, बट बहुत ही कम लोगों को डिफेंस में ज्वाइन करना होता है क्योंकि पता ही नहीं ज्वाइन कैसे करना है। बस तो आप ठान लो कि आपको देश की सेवा करनी है, फोर्सेस ज्वाइन करना है। रास्ता हम यानी कि मैं आरजे निशिता और कैप्टन जयदेव जोशी बताएंगे ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट में। जय हिंद और स्वागत है आपका ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी हम आर्मी के लिए एग्जाम देते हैं, नेवी के लिए एग्जाम देते हैं या फिर एयरफोर्स के लिए कोई भी एग्जाम के लिए प्रेप भी करते हैं तो क्या करना चाहिए। जैसे हमें पता है, वैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे पता है जहाँ तक, तो हम लोग 10th के एग्जाम या 12th के एग्जाम या फिर कॉलेज के एग्जाम के लिए अगले दिन ही प्रिपेयर करते हैं। तो क्या हम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करें तो ऐसे एग्जाम प्रिपेयर करेंगे तो चलेगा? क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल हमें मिलता है या नहीं, या फिर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इन सारी चीजों के जो जवाब है हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन जयदेव जोशी। लेकिन उनके साथ हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में आपको वो तमाम जानकारी मिलेगी जहां पे अगर आप घबराए हुए हैं कि डिफेंस फोर्स में जाने के लिए मुझे CDS का एग्जाम कैसे क्रैक करना होगा या फिर मुझे SSB इंटरव्यू करना है तो उसके पहले जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, वो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगी या कर पाऊंगी। UPSC के लिए मुझे अगर प्रेप करना है तो उसमें डिफेंस फोर्स में जाने के लिए मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी जो चीजें हैं आपको इस एपिसोड में पता चलेंगी। कैप्टन जयदेव जोशी इज विथ अस। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, जय हिंद।
थैंक यू निशिता, जय हिंद टू यू।
सर, अब आज के एपिसोड में मैं एक नॉर्मल इंसान बन के आपसे बात करूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि एग्जाम में मुझे क्या प्रेप करना है। जैसे कि हम लोग ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाले बच्चे होते हैं कि अब मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, मुझे डेट मिल गई, अच्छा एग्जाम को अभी 3 महीने बाकी है ना तो मैं बाद में पढ़ लूंगी, फिर अभी 2 महीने बाकी है तो मैं बाद में पढ़ लूंगी, 1 महीना बाकी है बाद में पढ़ लूंगी, और फिर जब सिर्फ अगला दिन आता एग्जाम का और तब हम किताबें खोलते हैं और एकदम जोम्बी की तरह पूरी रात पढ़ते हैं, देन वी गिव एग्जाम्स और वहाँ पे भी चीटिंग वगैरह ये वो होता है। लेकिन डिफेंस फोर्स में जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है?
निशिता, डिफेंस का एग्जाम है तो माहौल तो डिफेंस जैसा ही होता है।
Okay.
और कंडक्ट भी जो ये CDS एग्जाम है वो UPSC करता है। तो UPSC इज नोन फॉर द क्रेडिटेबिलिटी दैट दे हैव। वो CDS का पेपर सेट करना हो, उसकी सीक्रेसी हो, उसका द सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चंस, आपको आंसर किस तरीके से करने हैं, उसका तरीका, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट एंड वेरी फाइन एंड नाइसली प्लान्ड, डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड ऐसी एक प्रोसीजर है। सो मे बी ये लास्ट मिनट वाली पढ़ाई वाला काम नहीं चलेगा।
ओके।
डिसिप्लिन पढ़ाई से लेके पेपर लिखने तक, पेपर लिखते वक्त आप क्या करते हो, कितना मूवमेंट करते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो,
हाँ ये सब नोटिस होता है,
ये सारा नोटिस होता है, ये सारा आपकी आंसर शीट पे होता है। और ये मुश्किल इसलिए भी है कि लाखों बच्चे, जी हाँ, साल में 2 बार ली जाने वाली ये CDS एग्जाम लाखों बच्चे भरते हैं और कुछ हजार ही इसको क्लियर कर पाते हैं।
Okay.
क्योंकि जो कट ऑफ का बेंचमार्क है वो इतना ऊंचा होता है, इतनी टाइट कंपटीशन के कारण, क्या आप सोच ही नहीं सकते।
मतलब सबको हमारे यहाँ पे जैसे 35 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं, उससे तो कहीं ज्यादा होगा।
वी आर लुकिंग फॉर दी ऑफिसर्स टू वेयर द यूनिफॉर्म एंड मेक दी मदर नेशन प्राउड।
Absolutely.
तो वहां पे वो पासिंग मार्क वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे तो एकदम मेरिटोरियस बच्चे चाहिए हु इन लेस नंबर ऑफ the time duration, less number of minutes, are able to get more number of marks, and are able to stand high and first in the order of merit.
Wow, मतलब ये जो एक exam है ना, वो अपने आप में ही एक example है कि आप देखो यार defense में आ रहे हो, कोई 10th का exam आप pass नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही difficult exam इसीलिए रखा जाता है ताकि कोई भी चलो ना try कर लेते हैं, ये वाले जो बच्चे वो नहीं आए, लेकिन जिनके अंदर सच में जोश और जज्बा है ज्वाइन करने का, वो लोग आए, राइट सर?
यस डेफिनेटली निशिता, और अभी आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि CDS का जो एग्जाम है उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई सारी बातें। पर जो 10th या 12th स्टैंडर्ड के बाद फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में जवान के तौर पे, सिपाही के तौर पे भर्ती होते हैं, उनका भी एक रिटन टेस्ट होता है। मोर और लेस थोड़ी डेप्थ कम होगी, थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, बट उनका रिटन एग्जामिनेशन भी लगभग इन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करता है और इतना ही टफ, कॉम्पिटिटिव और ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन मांग ले, ऐसा होता है।
ओके, तो ये जो आपने बताया कि सब में प्रिपरेशंस जो है वो चाहिए, राइट? एंड लास्ट मिनट वाला प्रिपरेशन नहीं चलेगा, तो प्रिपरेशंस क्या करनी होती है, सिलेबस क्या होता है, एंड कब से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, इफ आई वांट टू अपीयर फॉर CDS एग्जाम? 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, कितना टाइम लगता है?
वेरी नाइस क्वेश्चन निशिता, और आपने जो 2-3 पहलू पूछे हैं, एक सिलेबस, कब से पढ़ाई करनी चाहिए और ये एग्जाम होता कैसा है, तो पहले इसको आंसर करने के लिए मैं पहले ये एग्जाम का जो फॉर्मेट क्या है वो हम अगर देख ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसका जो मोड है वो ऑफलाइन मोड है।
ओके,
आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एग्जाम अभी ऑनलाइन हो रहा है, बट दिस इज एन ऑफलाइन मोड। पेन पेपर ऑब्लिक पेंसिल के साथ आपने ये एग्जाम देना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये इसका फॉर्मेट है। 3 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक है इंग्लिश, दूसरा है जनरल नॉलेज और तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स।
ओके,
टाइम ड्यूरेशन जो इन तीनों पेपरों के लिए है वो है 2-2 घंटे ईच। मतलब अगर हम देखें तो इंग्लिश के पेपर में 120 सवाल होंगे और आपको टाइम मिलता है 2 घंटे। मतलब 2 घंटे, 120 मिनट और 120 क्वेश्चन, सो 1 question per minute,
राइट?
सेम वे जीके के लिए भी 2 घंटे और एलिमेंट्री मैथ्स के लिए भी 2 घंटे हैं। 20 क्वेश्चन कम है मैथ्स में, तो उधर थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है। ये सारे के सारे MCQs हैं, पर अगर आप CDS एग्जाम दे रहे हैं और आप OTA चेन्नई या गया के लिए जाना चाह रहे हैं, तब आपको एलिमेंट्री मैथ्स का जो रिटन पेपर है वो नहीं देना होता है, आपको सिर्फ इंग्लिश और GK के लिए अपेयर होना है। व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो 2 languages हैं, अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में क्वेश्चन पेपर होता है। यू कैन चूज आप किस में आंसर करना चाहते हैं वो। आपने सिलेबस की भी बात की, तो क्या सिलेबस है? तो इंग्लिश, GK और मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी बड़ा ही अच्छे से लेड आउट है। यू ऑल्सो आस्क कि आपने कब से प्रिपरेशन करना चाहिए।
राइट।
तो ये जरूर है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं चलेगा, पर इतना बॉग डाउन होने की भी जरूरत नहीं है कि साल दर साल मेहनत करनी पड़ेगी या ऐसा कुछ। मोस्टली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो जो अपना सेंट्रल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का, उसके 10th और 12th स्टैंडर्ड के बीच का जो सिलेबस होता है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो 10वीं से 12वीं के बीच में अगर कोई CDS की तैयारी करना शुरू करे NDA के लिए, क्योंकि वो 12वीं के बाद होता है, तो वो 2 साल बहुत है। इफ समबडी वॉन्ट्स टू अपियर फॉर द CDS एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट स्कीम्स में एंट्री होने के लिए, तब भी ऑलमोस्ट द सेम बेंचमार्क इज देयर। इंग्लिश का सिलेबस अगर देखे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर कोई सेंटेंस में कोई गलती है तो उसको सुधारना, कॉम्प्रीहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ ए सेंटेंस, ऑर्डरिंग द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, सिलेक्टिंग ऑफ द वर्ड्स, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पॉटिंग एरर्स।
अच्छा,
ये इंग्लिश के अंदर आता है।
तो सर ये जो होता है इसका कोई बुक होता है या फिर जनरली ही लाइक यू नो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम एनी अदर फिक्शन और कुछ भी नॉवेल्स पढ़ के या ऐसे स्टडी करना होता है?
यस, नॉवेल पढ़ के, पोएट्रीज पढ़ के आपका नॉलेज रिफाइन जरूर होता है, बट साथ ही में व्रेनन मार्टिन, हम सब जिसको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, ऐसी ग्रामर की किताबें भी पढ़नी जरूरी है। बट आजकल के ज़माने में जो बच्चे जिस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो ये है कि टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बुक के ऊपर सीधा पाउंस ऑन करते हैं।
राइट।
अकेला बुक पढ़ के, किताब पढ़ के, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर करके सॉल्व कर पाना मुश्किल है। जैसे मेरे पिताजी कहते हैं और कई सारे टीचर्स जो हैं वो ये कहेंगे कि जो भी आपकी किताब है, टेक्स्ट बुक वाली किताब, इस टेक्स्ट बुक वाली किताब में से कितना पढ़ना, अगर ये सवाल होता है तो जवाब ये होना चाहिए कि बुक के कवर, आगे के कवर से लेके पीछे के कवर के बीच में जितना भी कुछ है वो सारा पढ़ लेना चाहिए।
राइट,
बट नेवरदलेस टू आंसर इट, टिप्स एंड ट्रिक्स की किताब पर सीधा नहीं जाना चाहिए। मैं आप सभी जो हमें सुन रहे हैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स, इजी वेज, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको ना पढ़ते हुए आप पूरा सिलेबस कवर करती हो ऐसी किताब पढ़िए, उसके सारे चैप्टर्स पढ़िए, और जैसे जैसे आप एक के बाद एक चैप्टर करते जाते हैं वैसे उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं वो जिसमें दी हो ऐसी बुक पढ़िए। जब ये फाउंडेशन बन जाता है उसके बाद उसको बुक बोले या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बोले, ऐसे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हो उनको अटेम्प्ट करना, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन विच आई वुड सजेस्ट।
राइट, तो मतलब हमें बहुत कुछ रेफर करना है बट ऐसे मगअप या कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न। और यू नो जो रट्टू पोपट जो भी होते हैं यू नो एग्जाम में कि हम तो सब कुछ याद कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है।
डेफिनेटली इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि जब हम रट्टा मारते हैं तो हम पूरा पूरा रट्टा मारते हैं बिना सोचे रट्टा मारते हैं, और कभी कभी वो स्पिरिट को जगाने के लिए हम वो रट्टा मार वाले फिल्मी गाने सुनने लगते हैं और फिर दिमाग कहीं और ही चला जाता है।
True.
जब रट्टा मारते हैं तो बहुत सारा हमारे दिमाग में होता है, बट यहाँ पे आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, इतना लंबा लिखना नहीं है। चार मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी आपको दिए हैं, उसमें से एक को आपने पिकअप करना है, और ये भी है कि जब आप ये पिकअप करते हो तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक ही मिनट है।
यस, एक मिनट में आपको फटाफट खत्म करना है। सर ये केबीसी जैसा लग रहा है।
केबीसी जैसा लग रहा है बट केबीसी में एक चीज नहीं होती है वो है नेगेटिव मार्किंग।
राइट,
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। केबीसी में आपको फोन फ्रेंड लाइफलाइंस मिलती है, यहाँ कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक भी गलती करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाता है। चार नेगेटिव मार्क मतलब आपका एक भी जो आपने सही किया है उसके मार्क आप लूज कर दोगे।
बाप रे, मतलब ये दिमाग जो चलाना है वो चलाना ही है, बिना दिमाग चलाए आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते, आप रट्टा मार के एग्जाम दे ही नहीं सकते।
हाँ, और ज्यादा सोच विचार करने वाले, पढ़ाकू, डाउटफुल, अपने दिल में डाउट क्रिएट करने वाले लड़के भी नहीं चाहिए। एक मिनट में फर्स्ट आइडिया जो आता है, फर्स्ट थॉट को रिस्पेक्ट करते हुए आंसर करें, दैट इज मोर रिक्वायर्ड।
राइट, एंड डिसीजन मेकर, यू नो ये सही है, यू आर फास्ट डिसीजन मेकर एंड फोकस्ड बेसिकली।
यस यस।
अब आगे बात करें तो इस सिलेबस में, जैसे आपने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात की, अब जनरल नॉलेज के बारे में बात करें, क्योंकि अम्ब्रेला बहुत बड़ी है जनरल नॉलेज की, तो इसमें करंट अफेयर्स आएंगे, बॉलीवुड आएगा, क्या आएगा?
वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क निशिता। बड़े सारे हमारे डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम के एस्पिरेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो जनरल नॉलेज को जनरल अवेयरनेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ उसको करंट अफेयर्स के साथ साथ भी कंपेयर कर लेते हैं।
राइट,
अब करंट अफेयर्स जो है वो पिछले 3 महीने 6 महीने का आपको पूछा जाएगा, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले तो पेपर सेट हो जाता है।
right.
करीब 1 महीने पहले।
राइट,
तो द 3 थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जनरल नॉलेज अलग है, जनरल अवेयरनेस अलग है, और करंट अफेयर्स तो एकदम ही अलग है।
वेरी ट्रू।
तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जीके का जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज के सिलेबस के अंदर करंट एंड जनरल अवेयरनेस अपने आप आ जाता है। इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द एंटायर थिंग। इसके अलावा जीके में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, अवार्ड्स, वेरियस अवार्ड्स, नोबेल अवार्ड, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड वेरियस बुक्स एंड देयर ऑथर्स।
अच्छा,
ये सिलेबस है जीके का। अवेयरनेस भी है और इसमें यू नो देयर सम करंट अफेयर्स क्वेश्चन आल्सो व्हिच आर ऑलमोस्ट अ मंथ, एग्जाम के 1 month प्रायर तक का जो भी करंट अफेयर हुआ है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं।
सर जैसे अगर मुझे प्रेपरेशन करनी है किसी एग्जाम के लिए, सपोज सीरियस के एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो अगर मैं स्टेशनरी में जाके मैं पूछूंगी कि मैं कौन सी बुक खरीदूं, तो व्हाट शुड आई आस्क, कि मुझे आर्मी के प्रिपरेशन के लिए एक बुक खरीदनी है तो मुझे वो बुक दीजिए, तो मुझे क्या देंगे, व्हाट शुड आई बाय?
देयर आर मेनी मेनी बुक्स अवेलेबल एंड देयर आर वेरियस पब्लिकेशंस, बड़े सारे जाने पहचाने पब्लिकेशंस है। इस किसी भी पब्लिकेशन को देखते हुए और दो तीन चीजें जो हमने पहले कही उसको दोहराते हुए, उनको अगर याद रखा जाए कि जो आपका सिलेबस का चैप्टर है उस सिलेबस के चैप्टर के बारे में बहुत कुछ लिखा हो, चैप्टर टू चैप्टर एमसीक्यू दिए हो, और उसके बाद सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर दिए हो, और लास्ट में पिछले 3 साल या 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा उसका सेट दिया हो, ऐसी किताब खरीदना ज्यादा ठीक रहेगा।
तो सर, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, जो सिविलियंस भी, यू नो, दे वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड दे इवन इफ दे डोंट वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, तो इनकी पूरी स्टडीज रहती है इसके बारे में, तो सिमिलर सिलेबस कह सकते हैं,
ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम लेता है उसका भी सिलेबस यही है।
ओके,
एट टाइम्स उसके डेप्थ में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो इट कैन ऑल्सो बी ए वेरी गुड आइडिया, जो चीज के ऊपर आपने पॉइंट आउट किया है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वैसे अपने फ्रेंड के साथ बैठ के यूपीएससी की ही सीडीएस एग्जाम का प्रिपरेशन करना, दैट कैन बी मोर हेल्पफुल।
एब्सोल्युटली, और ये दोनों साथ में भी पढ़ेंगे तो आइडियाज एंड कॉन्वर्सेशंस में भी किसी को पता चलेगा कि मेरा इतना प्रिपरेशन हुआ है, दूसरे को पता चलेगा कि मेरा इतना प्रिपरेशन बाकी है, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे वो पढ़ना चाहिए। एंड सर, जैसे यूपीएससी जो भी एग्जाम अपियर करते हैं ना, उन लोग पूरे साल में ना तो उत्तरायण मनाते हैं, ना तो दिवाली मनाते हैं, ना तो थिएटर्स में जाते हैं, ना तो सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, मतलब बेचारे एकदम यू नो जैसे उनको किसी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, पीएचडी की पढ़ाई के लिए बैठाया गया हो, ऐसे बिहेव करते हैं। तो आर्मी के एग्जाम के लिए भी क्या उनको ऐसे ही करना होता है?
अब इस तरीके की प्रिपरेशन कौन करता है उसके बारे में तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा पर जो आपने कहा कि वो बेचारे प्रिपरेशन ही करते रहते हैं, ना त्योहार मनाते हैं, ना पार्टी करते हैं, ना दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, पर फौज की जो प्रिपरेशन करते हैं वो बेचारे नहीं होते, वो बेफिक्रे जरूर होते हैं।
True.
बेफिक्रे इस तरीके से भी होंगे शायद कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बट अपनी यूपीएससी सीडीएस की एग्जाम की किताब को साथ में लेके गए हैं। कॉफी पीते पीते ही वहां पे कैफाइन के ऊपर कुछ आ गया और कैफाइन का कोई क्वेश्चन है तो वहीं पे वो नो एट द स्नैप ऑफ द फिंगर बोलेगा कि हाँ मिल गया मुझे एक आंसर, वो यूरे का मोमेंट उसके लिए आ जाएगा। मे बी कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 24 के 24 घंटे आपका मन इसी यूपीएससी एग्जाम की सीडीएस की जो पेपर स्टाइल है उसमें और उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें होना चाहिए।
सर, एक और क्वेश्चन है मेरे मन में कि ये जब एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं और यू नो रात रात भर कोई जाग के करता है, कोई ऐसे ही करता है, कोई वैसे ही करता है, तो जैसे हमने पहले बात की कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यू नो पढ़ाकू बन के, लेकिन कोई जॉब कर रहा है, सपोज किसी का जॉब चालू है, कोई ऑलरेडी कोई दूसरी पढ़ाई कर रहा है और इसके साथ में इनको ये प्रेपरेशन करनी होती है, तो वो बैलेंस कैसे कर पाएगा?
इस एग्जाम में बैलेंस कर पाना उतना ही जरूरी है जितना और भी किसी एग्जाम में बैलेंस कर पाना जरूरी रहेगा। इट डजंट मेक यू बॉग डाउन और मे बी नो बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऐसी जरूरत नहीं है। आप जॉब करते करते, पढ़ाई करते करते भी एग्जाम दे सकते हैं, बड़े सारे बच्चे ये एग्जाम देते हैं। थर्ड ईयर ग्रेजुएशन खत्म करते करते ही एक एग्जाम आ जाता है, उसका रिजल्ट भी नहीं होता है। अच्छा। पर फिर भी कुछ बच्चे एकदम इतनी तैयारी में होते हैं कि उसका रिजल्ट तो यस मेरा जितना एग्रीगेट परसेंट लेना है वो आ ही जाएगा, पर इसके साथ साथ सीडीएस की तैयारी कर देते हैं। अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ ये हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर ले तो सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन और उन 120 मिनट में 1 मिनट पर क्वेश्चन के सिनेरियो में भी हम अच्छा काम कर पाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज द एसेंस हियर।
और सर, अभी हम बात करना चाहेंगे हमारे तीसरे सब्जेक्ट, मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। किसी किसी लोगों को यू नो मैथ्स का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है और यू नो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं कि नहीं यार मैथ्स अब मुझसे नहीं सहन हो पाएगा। तो मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, डरावना होता है या फिर सिंपल होता है या फिर कैसा होता है?
कईयों की तो रातों की नींद उड़ जाती है मैथ्स का नाम सुनते एंड वाई गो फार आई एम वन ऑफ देम।
ओह माय गॉड, तो आपने कैसे किया फिर ये?
बस वो चाह थी, वो लगन थी, वो पढ़ने का वो जज्बा था, तो मैं क्या, मेरे जैसे कई लोगों ने ऐसे ही क्लियर किया होगा। बट या मैथ्स का सिलेबस भी अगर हम देख ले तो नंबर सिस्टम पूछते हैं, एरिथमेटिक में से बड़े सारे सवाल आते हैं, अलजीब्रा, अलजीब्रा में भी बड़े सारे उसके अंदर अंदर द थिंग्स आर देयर विच आर देयर, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को यूज करना, सिंपल सिंपल केसेस होते हैं हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के, ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशंस एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आती है। इन सारी चीज़ों में भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। देन वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट वन विच इज स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स आता है।
ओके,
स्टेटिस्टिक्स में भी बड़े इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्क्वेयर रूट्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, HCF, LCM, लॉ ऑफ इंडाइसेस, सेट थियरी, सेट नोटेशन, एरियाज ऑफ स्क्वेयर, सरफेस एरिया, हिस्टोरोग्राम्स, ये सारी चीजें हैं जो मैथ्स के सिलेबस को बनाती है।
सर लेकिन एक बात मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगी कि ये सारे सिलेबस जो हैं, जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी, ये लैंग्वेज जो है वो जरूरी है, इसलिए उसके जो क्वेश्चन है वो हमें समझ में आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमें समझ में आते हैं, लेकिन ये मैथ्स जो है ये डिफेंस फोर्स में कहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें ये यू नो ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक एंड ये एंड वो करना ही पड़े?
एकदम ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपने पूछा है निशिता। ऑपरेशन शूरवीर जो करता है वो यही करता है कि जो भी डाउट्स है, जो भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम फौज में जब तैयारी करते हैं तो ऐसी गुंडियां हैं है ना, ऐसे गूगली क्वेश्चंस हैं कि जिनको मदद करता है आंसर करने में, यही काम है ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट का। मैथ्स में इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए इनफ है। पर आपका सवाल जायज है कि मैथ्स कहाँ काम आता है। फौज जानी जाती है स्प्लिट सेकेंड डिसीजंस लेने के लिए, एंड ऑल्सो एज इट इज सेड के द मैन इज एज गुड एज नो द मशीन दैट इज हैंडलिंग, और इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। फौज में यह भी कहा जाता है कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। नाउ अगर वो मशीन में बड़े सारे डायल्स लगे हुए हैं, बड़े सारे स्केल्स लगे हुए हैं, बीट आर्टिलरी गन, एक आर्मर्ड टैंक या फिर कोई और आर्मी एयर डिफेंस का कोई गन, ऐसी चीजें आर्मी में, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है, अगर इन सब डायल्स, इन सब मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना है और स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना है तो मैथ्स के ऊपर एकदम मजबूत पकड़ और कमांड जरूरी है। एंड दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इवन वेन इज गोइंग इन टू द आर्मी। यहाँ पे ये कहना भी बहुत जरूरी है कि लक्ष्य मूवी में जब ऋतिक रोशन गाता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो पढ़ाई से भागने के लिए भी मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा डाउट अपने पे रखने वाले बड़े सारे बच्चे ये सोचते हैं कि फौज में चले जाते हैं, बस गन उठानी है, गन चलानी है, यही करना होगा। बट उनके लिए बहुत बड़ा शौक होता है जब वहां पे भी जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। टेक इट फ्रॉम मी कि जब मैं भागता था मैथ्स से आर्टिलरी में जाता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंडे जिनको अवॉइड करते करते भी अगर मैं शायद मैथ्स में या 12th स्टैंडर्ड में या स्टेटिस्टिक्स को आंसर करते करते फर्स्ट क्लास ले लेता, वहां पे कोई भागने का एस्केप डोर नहीं है। आपकी गन को अगर फायर करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंडे आपको प्रैक्टिकली भी आने चाहिए।
एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड सर। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, इनफैक्ट हमारे ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट के जो भी अभी जो सुन रहे हैं, कि इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स चाहिए। जो आईएमपी मटेरियल होते हैं ना, वो आप हमारे आईएमपी मटेरियल हो, तो आप हमें कुछ टिप्स दे दो कि जिससे ये एग्जाम्स ऐसे यूं चुटकियों में क्रैक हो जाए।
बिल्कुल जरूर देंगे, और फौज भी कई बार ये करती है, वी कॉल इट देयर पीसीके।
ओके,
पीसीके को बोलते हैं कि प्रीवियस कोर्स नॉलेज।
ओके,
हम में से कोई जब चालू सर्विस में भी कोई एक कोर्स करके आता है और अगला कोई कोर्स करने जाने वाला होता है तो उसको पूछ लेता है कि बता भाई क्या आता है। तो वो प्रीवियस कोर्स का नॉलेज बहुत मदद करता है। यहाँ पे आपको मदद करेगा प्रीवियस कोर्स के या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो आपको देख लेने चाहिए। उससे आपको पेपर स्टाइल का आइडिया आएगा, कितने क्वेश्चंस किस डेप्थ के आते हैं वो जरूरी है।
जी,
जब प्रिपरेशन करते हैं तो वन मस्ट मेक ए प्लान। अब वो दिन का प्लान हो सकता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लान हो सकता है, एंड चैप्टर टू चैप्टर भी प्लान हो सकता है, वो करना जरूरी है.
राइट.
सिलेबस को असिमुलेट करना. किसी की स्टाइल ये होती है कि आसान वाले चैप्टर से आसान वाले क्वेश्चन खत्म करके सिलेबस जल्दी खत्म कर देंगे. या फिर किसी की उल्टा भी स्टाइल हो सकती है कि मुश्किल वाला पहले कर लेता हूँ, आसान तो अपने आप हो ही जाएगा. तो ये प्लान बनाना, उसके लिए सिलेबस को असिमुलेट करना ये ज्यादा जरूरी है.
राइट.
टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन में भी, कुछ लोग दिन में सुबह भोर में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लेट नाइट होते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम देते देते टाइम को मैनेज करना.
राइट.
अगर कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि आप नहीं कर पाओगे अटेम्प्ट, तो मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए जो आसान वाले हैं उसमें. किसी एक के ऊपर स्टक अप रह के आप बाकी क्वेश्चन को दिए जाने वाला टाइम बिगाड़ नहीं सकते, वो जरूरी है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज द की. इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल अगर आपको टाइम बच जाता है, कुछ क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए हो, तो उसको गलत मत आंसर करिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा परसीवियर करिए और उसके सही आंसर तक पहुँचिए. नेगेटिव मार्किंग की बात की, साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन के टाइम पे भी और जब एग्जाम को क्रैक करने बैठते हैं तब भी. एंड अबव एंड एवरीथिंग, बिलीफ बिलीफ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ. अपने आप के ऊपर बिलीफ रखना, अपने आप को लॉयल रहना, अपने सपने को पाने के लिए खुली आंखों से सपना देखना और खुली आंखों से मेहनत करना. और इसके अलावा और कोई नशा ना हो, जैसे इसी को अपना नशा बना लो, ऐसा एक जज्बा ये होना जरूरी है.
एब्सोल्युटली. और तभी ये जो हम हैं वो लेट नाइट या फिर भोर में पढ़ के अपना ये जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं. और सर ने दी है हमें बहुत सारे टिप्स, आई एम श्योर वो फॉलो करके हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं.
एक किस्सा फौजी का.
सर अब इतने एग्जाम्स की बात की और आपके मैथमेटिक्स के फंडे के बारे में भी हमने बात की, तो हम आपके इस जर्नी के, एग्जाम वाली जर्नी का जो कोई एक किस्सा है, हम सुनना चाहेंगे एक किस्सा फौजी के सेगमेंट में.
CDS एग्जाम की बात हो रही है तो मैं आई फॉल बैक टू माई मेमोरीज. जब मैं, मेरे एक दोस्त, माई फ्रेंड फॉर लाइफ, राजन उसका नाम है, राजन टूमर, उसके साथ एग्जाम देता था.
ओके.
एंड राजन वॉज नॉट दैट अ ब्राइट स्टूडेंट, पर जो ब्राइट था वो था उसका जज्बा, उसकी मेहनत करने का तरीका, उसका दिमाग. कई कई बार तो वो एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले ये भी बोल देता था कि यार मुझे उस बात का टेंशन आ रहा है कि एग्जाम आ गई पर मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रहा है. तो उस टेंशन क्यों नहीं आ रही है उसका टेंशन रखने वाला राजन हर बार लास्ट मिनट पे पुलअप तो कर ही लेता था. उसने 7-8 बार क्लियर की CDS एग्जाम.
ओके.
अल्टीमेटली ही हैड सम अदर ड्रीम्स एंड ही परस्यूड दोज ड्रीम्स, बट वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम, उसने मेरे से पहले SSB भी अपियर कर चुका था. सो ही वॉज ग्रेट इन हिज ओन राइट्स. जो हम उसमें से सीखते थे, जो हम लोग सभी साथ में तैयारी करते थे, वो ये थे कि टेंशन आना ना आना कुछ भी हो, राजन उसी में लगा रहता है और हर बार उसी जोश के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, एग्जाम देता है. पूरी प्रिपरेशन, एग्जाम देना, वहां पे जाना, बस से उतरना, उसके लिए कौन सा शर्ट पैंट पहनेगा, इस पूरी चीज को वो एक सेलिब्रेशन के तौर पे देखता था. तो इस एग्जाम से ना डरने का, उसको सेलिब्रेट करने का और अपने आप को एक्सेल कर पाने के लिए UPSC ये CDS एग्जाम का हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वैसे अगर हम सेलिब्रेट करें. और ये हम देखते थे राजन की लाइफ में से, तो दैट्स अ वेरी टचिंग थिंग. एंड अगर किसी भी एस्पिरेंट को मैं बोलूं कि कैसे तैयारी करो, तो बस ऐसे तैयारी करो कि तुमको टेंशन आए कि तुमको टेंशन क्यों नहीं आ रही है, और उसी टेंशन ना आने के चक्कर में आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और अच्छे मार्क लाते रहो.
क्या बात है, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच. और आज के इस एपिसोड में आपने जान लिया है कि आप कैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे और क्या सिलेबस होते हैं, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है. जैसे कि आप डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम्स को ऐसे तरीके से क्लियर कर पाओगे. अब अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यूज के बारे में. जैसे एग्जाम्स डरावने होते हैं, वैसे ही SSB इंटरव्यू भी घबरा देने वाली चीज होती है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं. सर जो है हमारे साथ है, कैप्टन जयदेव जोशी with us and he will tell us कि हम कैसे आसानी से SSB का इंटरव्यू जो है प्रिपेयर करके क्लियर कर पाते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और कैप्टन जयदेव जोशी के साथ ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट में. कैप्टन जयदेव जोशी की बातों से आप में भी वो जोश और जज्बा डिफेंस ज्वाइन करने के लिए जाग चुका है, तो बने रहिए हमारे साथ ऑपरेशन शूरवीर पॉडकास्ट में। यू कैन डीएम अस योर क्वेरीज एंड टू गिव अस फीडबैक द लिसनर्स कैन रीच आउट टू अस ऑन @HT Smartcast. We are present on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn. To listen to more podcasts, log on to www.htsmartcast.com और सुनो नए नजरिए से।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था Fever FM Production. HT Smartcast.